मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 17 अगस्त 2015 है, दिन है सोमवार और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में दो दिनों के बाद मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने 8 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं दीपक सिंह राजपूत, आप ग्वालियर से हैं और ग्वालियर से ही हैं पंकज यादव, संतान कुमार जहानाबाद बिहार से, अर्जुन कुमार अररिया बिहार से, मुदित शर्मा बुलंदशहर यूपी से, सुपारे प्रहलाद रामा नांदेड़ महाराष्ट्र से और नांदेड़ ही महाराष्ट्र से हैं श्रीकांत नारायण, और आठवीं मित्र हैं उर्वशी पांड्या अहमदाबाद से। तो दीपक पंकज संतन अर्जुन मुदित सुपारे श्रीकांत और उर्वशी आप आठों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज मेरे पास एक मेल आया है जिसमें ये बात लिखी हुई है कि पंद्रह दिन की क्लास अटेंड करने के बाद किस तरह से दुनिया को देखने का, चीजों को समझने का उनका नजरिया बिल्कुल बदल गया और वो दिन पर दिन लगातार व्यापक होता चला गया। और ये तभी हो गया जब वो 15 दिन की यहां क्लास अटेंड कर रहे थे, सेकेंड बैच के स्टूडेंट हैं, अब वो लगातार विस्तार होता चला जा रहा है। तो मित्रों मैं यकीन दिलाता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में जो आप सब क्लास के लिए एनरोल करा रहे हैं, निश्चित रूप से यहां आने के बाद यदि आपने इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाया तो इसी तरह के मेल आप भी मुझे लिखेंगे और इस तरह के ही मेल लिखकर आप सही मायने में मुझे अपनी तरफ से रिवार्ड देंगे या यूं कह लीजिए कि गुरु दक्षिणा देंगे, प्रदान करेंगे। मित्रों एक छोटी सी खबर है और वो ये कि स्पेशल ऑडियो गाइडेंस सभी फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट्स के पास भेज दिया गया है। ये स्पेशल ऑडियो गाइडेंस जैसा कि मैंने बताया था, अब हम लोग कुछ गाइडेंस में स्पेशल ऑडियो गाइडेंस में एसे के बारे में बात करेंगे। तो ये जो पहला गाइडेंस है ये एसे के स्ट्रक्चर के ऊपर है कि आपको एसे लिखना कैसे चाहिए, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेकर के मैंने पॉइंट्स बताने की कोशिश की है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्पेशल ऑडियो होंगे उनमें जो 2014 में कुछ एसे के टॉपिक्स दिए गए हैं उन्हीं को लेकर के हम बात करेंगे। तो आप सब अपना अपना मेल एक्सेस कर लें। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं अपने एक सिस्टम पर जो हमारा फर्स्ट स्टेज है मोटिवेशन का, और हम लोग मोटिवेशन वाले पार्ट में इस इश्यू पर बात कर रहे थे कि हम कैसे अपने आप को हल्का करें, और उसके अंतर्गत मैं इस बात पर चर्चा कर रहा था कि हल्का तो करें लेकिन सबसे पहले ये तो समझें कि क्या हम बोझिल तो नहीं हो गए हैं या हम हल्के ही हैं, क्योंकि ज्यादातर संकट इसी बात का है मित्रों कि हम समझते ही नहीं कि हम भारी हो रहे हैं। हम हमेशा यही समझते हैं कि हम तो ठीक ठाक हैं, हम तो बहुत हल्के हैं, दूसरे लोग ही बेकार के हमसे कन्नी काट रहे हैं, दूसरे लोग ही हमें समझ नहीं पा रहे हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि भाई दूसरे कन्नी क्यों काट रहे हैं, या दूसरे अगर हमें समझ नहीं पा रहे हैं तो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन्हें समझा ही ना पा रहे हों। ये जो कन्नी काटने और समझने की जो बात कही है मित्रों ये इसी का इंडिकेशन है, इसी का संकेत है, प्रमाण है कि हम बोझिल हो रहे हैं। मित्रों जो हम बोझिल हो रहे हैं इसको मैं दो भागों में बांटकर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। पहला तो वह कि दूसरे लोगों से अपने व्यवहार को लेकर के हम समझने लगते हैं कि हम कहीं ना कहीं बोझिल हो रहे हैं, और दूसरा यह कि हमारा अपना भी स्तर होता है, हम खुद भी इस बात का एहसास कर सकते हैं कि सही में हम कुछ भारी हो रहे हैं। तो मित्रों हम सबसे पहले आते हैं उस बिंदु पर कि दूसरों लोगों के व्यवहार से कार्यों से हम कैसे समझें कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हो रही है। तो दोस्तों उसी के अंतर्गत जो अभी मैं दो बातें कह रहा था आपसे कि लोग हमसे कन्नी काटने लगते हैं, वो हमसे दूर भागने लगते हैं, वो हमसे बातचीत करना नहीं चाहते, या इसे ही दूसरी भाषा में कह लीजिए कि वो हमें पसंद नहीं करते, अब वो पसंद क्यों नहीं करते, कन्नी क्यों काट रहे हैं। मैं ये ऐसा नहीं कहता कि इसमें सारी गलती हमारी ही है क्योंकि हम बहुत बोझिल हो गए हैं, क्योंकि सामने वाले का व्यवहार कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है, इन बातों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि कोई हमसे कन्नी काट रहा है। लेकिन मित्रों, ज्यादातर मैं जिस सिद्धांत को लेकर के चलता हूं वो ये कि दूसरों का हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरों को हम बदल नहीं सकते, दूसरों को हम बता नहीं सकते, दूसरों को हम समझा नहीं सकते। हम केवल एक काम कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, और वो ये कि हम खुद को बदल लें, खुद को समझा लें, खुद को बता लें। इसीलिए मित्रों, ये जिम्मेदारी भी हम पर ही आती है कि हम कैसे अपने आप को एनालाइज करके और फिर एनालिसिस के बाद उन कमियों को, उन खामियों को दूर करने की कोशिश करें जिसकी वजह से लोग हमसे कट रहे हैं। कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से वो हमसे कटना चाहते हैं। उन्हें हमारी बातचीत अच्छी नहीं लगती होगी, हमारे विचार अच्छे नहीं लगते होंगे, हमारे व्यवहार उसको जिस तरह का भी हम करते हैं पसंद नहीं आते होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। और इसी का एक सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि वो हमारी मदद नहीं करना चाहते, वो हमसे सहयोग नहीं करना चाहते, यहां तक कि वो हमारा खुद का सहयोग भी नहीं लेना चाहते। बहुत से आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि आप चाह रहे हैं कि आप उनकी मदद करें लेकिन कह रहा है कि भैया रहने दो, नहीं दो, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। ये बात अलग है कि उसे किसी न किसी की तो हेल्प चाहिए, वो आपकी नहीं लेना चाह रहा है और बड़े एक सभ्य तरीके से, सुसंस्कृत तरीके से आपसे कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, ऐसा क्या कारण हो गया कि वो हमारी मदद नहीं लेना चाह रहा है? मदद करने की बात तो दूर की ही बात है, हमारे साथ नहीं रहना चाह रहा है। कई बार ऐसे होते हैं, कई बार ऐसी बातें होती हैं, आप हॉस्टल में एक कमरे में दो स्टूडेंट रह रहे हैं या पीजी में तीन चार स्टूडेंट रह रहे हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट के साथ आप नहीं रहना चाहते, आपको लगता है कि यार अलग हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिससे आप अलग होना चाह रहे हैं सारी गलती उसी की है, आपको भी अपने लेवल पर सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही अपने आप में इतना बोझिल हो गया हूं कि दूसरे हल्के वाले मुझे इतने हल्के लग रहे हैं कि मैं उनके इस हल्केपन को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा हूं, और नतीजा ये हो रहा है कि मैं उससे अलग होना चाह रहा हूं। तो मित्रों, ये जो पहला पॉइंट है जो जिसमें मैंने दूसरे व्यक्तियों के आधार पर खुद का मूल्यांकन करने की बात कही, उसका कुल मिलाकर के जो सार है वो ये है कि जो दूसरे व्यक्ति हैं वो हमसे कन्नी काटने लगते हैं। इसे ही आप अलग अलग नाम दे सकते हैं, अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं उस पार्ट पर जब हम व्यक्तिगत तौर पर इस बात को महसूस कर सकते हैं कि यार हम तो बोझिल हो रहे हैं, अब हम भारी हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स कि यदि हम इस सेकेंड वाले को समझ लेते हैं, हमारे अंदर अब जो रिएक्शंस होने शुरू हुए हैं, हमारे भाव, विचार, व्यवहार, सोच, इन सब से हम बने हैं। जैसे एक केमिकल्स होते हैं ना कि बहुत सारे केमिकल्स को मिला दीजिए तो उसमें एक नया कंपाउंड बन जाता है, वही मेडिसिन बन जाती है। तो हमारे अपने केमिकल्स क्या हैं जिसके अंतर जिस जो अंदर ही एक दूसरे से मिल करके हमें कंपाउंड के फॉर्म में दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो मित्रों, इससे पहले मैंने चेतना की बात कही थी, यहां मैं चेतना को नहीं ला रहा हूं, है ना, क्योंकि चेतना उस तरीके से समझ में नहीं आएगी और उसकी जरूरत भी नहीं है। इनफैक्ट चेतना की बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन व्यवहार, विचार, चेतना को आप विचार से रिप्लेस करें, जो हमारे थॉट्स हैं। नंबर एक होगा थॉट्स, और जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसे ही हमारे एक्शन होंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्शन, एक्शन में आ जाता है हमारे कर्म, और तीसरा आज आता है मित्रों हमारा व्यवहार। देखिए, कर्म और व्यवहार में थोड़ा सा फर्क है। कर्म तो यह है कि हम काम करते हैं, है ना, कोई भी वर्क कर रहे हैं, और व्यवहार होता है कि जो हम डे टू डे लाइफ में लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। हालांकि इंटरेक्शन करना भी एक तरह का कर्म ही है, लेकिन इसे हम प्योरली कर्म नहीं कह सकते। तो हमारे अंदर जो बेसिक केमिकल्स हैं, जो एलिमेंट के फॉर्म में हैं, वो है मित्रों हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारे व्यवहार, ये तीनों मिलकर के हमारा निर्माण करते हैं जिससे हम बनते हैं। और जब इन तीनों के केमिकल्स में इनके अपने अनुपात में कुछ गड़बड़ी होती है, कम बेसी होती है, तो आप समझ लीजिए कि हम भारी होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि गड़बड़ी की शुरुआत हो गई है। तो जाहिर है कि इन तीनों को हम कैसे इंटैक्ट रख सकते हैं, इन तीनों के अनुपात को कैसे हमेशा संभाल कर रख सकते हैं, ये हम आगे चल करके देखेंगे। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखिए 24 घंटे तो आप नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर समय हम कर सकें, बस यही हमारी कोशिश होनी चाहिए और ये कोशिश हो सकती है। तो मित्रों, जब ये तीनों अंदर के हमारे केमिकल्स मिलते हैं और जब इनके अनुपात में गड़बड़ी होती है, तो देखिए कि हमारे अंदर किस किस तरह के परिवर्तन होते हैं। और इस तरह के जब परिवर्तन हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि हम बोझिल हो रहे हैं, हम भारी हो रहे हैं। मित्रों, हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, चिड़चिड़ाने लगते हैं, बेवजह चिड़चिड़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये चिड़चिड़ाना क्या है? अभी बरसात के दिन है, जो गांव के स्टूडेंट हैं वो उनको याद होगा कि अभी भी, अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन कुछ घरों में ऐसा होगा जहां चूल्हे में लकड़ियां जलाई जाती हैं, ईंधन के तौर पर लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। गर्मी में तो लकड़ियां सूखी होती हैं तो भड़भड़ा करके जलती हैं, क्योंकि वो हल्की होती है, सूखी लकड़ी हल्की होगी। लेकिन अभी बरसात के दिनों में जब वो लकड़ियां गीली हो गई हैं, अब आप उनको जलाइए, अब आप देखिए कि क्या होता है, उसमें से कसैला धुआं निकल रहा है, लकड़ियां भारी हो गई हैं और चिड़चिड़ चिड़चिड़ आवाज भी आ रही है। यानी कि जब कोई चीज भारी होती है तो चिड़चिड़ाने लगता है, सीधी सी बात है, यह प्रकृति का नियम है। मित्रों, हमारे अंदर भी यही होता है, अगर हम में चिड़चिड़ाहट पैदा हो रही है, देखिए ऑकेजनली सारी चीजें होती हैं और ऑकेजनली जो चीजें भी हो रही हैं, जो भी बातें हो रही हैं, उन्हें आप उससे आप अपने आप को पूरी तरह से आइडेंटिफाई मत कीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप यही हैं, लेकिन अगर हर समय यही हो रहा है तब डेफिनेटली लोग कहेंगे कि इसका स्वभाव तो भाई बड़ा चिड़चिड़ाहट वाला है, ये तो बड़ा चिड़चिड़ाता रहता है। तो इससे अपने को विड्रा करो, कम से कम मिलो, मिल लिए तो जल्दी से जल्दी मुक्ति पाओ, क्योंकि ये जो चिड़चिड़ाना है ना, ये बर्दाश्त नहीं होता है जब आप चिड़चिड़ाने लगे। और मित्रों, ये जब चिड़चिड़ाना जब ज्यादा वक्त तक चलता है, या किसी एक बात पर आप ज्यादा चिड़चिड़ाने लगते हैं, तो सामने वाला भी रिएक्ट तो करेगा ही, और जब वो थोड़ा सा भी रिएक्ट करता है तो आपका ये जो चिड़चिड़ाना है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ जो छोटी छोटी चिंगारियां निकल रही हैं, ये भभक जाती है, आग के शोलों में तब्दील हो जाती है, आप गुस्सा हो जाते हैं, एंगर आ जाता है, आप क्रोधित हो जाते हैं। यानी कि जब आप गुस्से में हैं, तब फिर से आप समझ लीजिए कि एक बार आप अपने को बोझिल बना रहे हैं, अब आप हल्के नहीं हैं। क्या आपको लगता है मित्रों कि जो व्यक्ति चिड़चिड़ाता रहेगा उसे मदद देने के लिए कोई आगे आएगा, उसके साथ कोई रहना चाहेगा, या जो लगातार गुस्सा ही होता रहेगा कोई उसकी मदद करेगा या कोई उसके साथ रहना चाहेगा? क्या आप खुद ही रहना चाहेंगे? क्या दूसरे की बात छोड़िए, क्या आप चिड़चिड़ाने वाले व्यक्ति के साथ रहना चाहेंगे? क्या आप उसे मदद करके अपने कंधों पर बिठाकर कहीं ऊंचा उठाना चाहेंगे? क्या गुस्से वाले आदमी से आपको डर नहीं लगता है कि भैया ये तो गुस्सा होता रहता है? लगता है, हर एक को होता है। तो जब जो चीज हमें अपने साथ हो रही है वही दूसरा भी हमारे साथ करेगा, सीधी सी बात है, दूसरे को भी लगभग लगभग वही चीजें अच्छी और बुरी लगेंगी। तो मित्रों, ये अब मैं हमारे अंदर की जो भावनाएं होती हैं, जो विचार होते हैं, उनको लेकर के कुछ मैं बातें कर रहा हूं। तो आज मैंने केवल दो गुणों पर बात की, अवगुणों पर जो भी कह लीजिए बात की है, तत्वों पर बात की है, वो है चिड़चिड़ाना और क्रोध। ये जब होने लगे तो आप समझ लीजिए कि आप भारी हो रहे हैं। आगे हम इसको जारी रखेंगे और कल हम इस पर आगे बात करेंगे। मित्रों, अब मैं आता हूं AIR न्यूज पर। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले फ्राइडे को आप लोगों से अर्ज किया था कि अभी प्राइम मिनिस्टर हमारे उद्बोधन करेंगे राष्ट्र को 15 अगस्त के दिन लाल किले से, जो हमारी परंपरा रही है। तो इससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर उद्बोधन करें, आप उनके भाषण को सुने, बेहतर होगा कि आप खुद कुछ पॉइंट्स तैयार कर लें। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने ऐसा किया होगा और इसके बाद फिर आप लोगों ने उसे मैच किया होगा कि जो आप सोच रहे थे वो किस तरीके के थी और प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं वो कौन सी बातें थी। मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि लगभग लगभग 40% तो आप सही हुए होंगे, और यदि आप 40% सही है तो आप 100% सही मानिए। मतलब यहां आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पूरी तरह से, है ना। सिचुएशंस बदलती हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस, कंट्री की रिक्वायरमेंट्स बदलती हैं कंट्री की, और इसके बाद फिर पूरा का पूरा वर्ल्ड अफेयर होता है, तो उसमें आप 100% नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 40% है तो इक्वल टू 100% है, और यदि उससे आप जिस अनुपात में कम होते चले जाते हैं उसी अनुपात में आप अपने को कम मान लीजिए। लेकिन किसी भी मायने में निराश बिल्कुल भी मत होइएगा। ये केवल एक बैरोमीटर था या थर्मामीटर मैंने आपको प्रोवाइड किया था कि आप अपना मूल्यांकन कर सकें, और बीच बीच में मित्रों इस तरीके से थोड़ा सा मूल्यांकन करते भी रहना चाहिए। सैटरडे को प्राइम मिनिस्टर ने उद्बोधन दिया और संडे के अखबारों में उनके भाषण के बारे में सब कुछ आ गया, न्यूज में भी उसी दिन रात में आ गया होगा, आया ही है, तो बट नेचुरल है कि फिर संडे की न्यूज में जो रात की न्यूज होगी उसमें फिर प्राइम मिनिस्टर के उस भाषण की कोई चर्चा नहीं होगी। मित्रों उसी के साथ ही मैं एक बात आपको और याद दिलाना चाहूंगा कि 25 अगस्त, मतलब ये आपके 14 अगस्त को, अक्सर ये होता है कि 14 अगस्त को कि मतलब स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या यानी कि 14 अगस्त को राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं, राष्ट्रपति का भाषण होता है, वह भी आपको सुनना चाहिए, और अगर नहीं भी सुना होगा तो कोई बात नहीं, अखबारों में उनकी रिपोर्टिंग आ गई है। अब मैं इन दोनों भाषणों को लेकर के जो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में थी मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात मित्रों की, जो राष्ट्रपति जी ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है, और मैं ये जो इंपॉर्टेंट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं ये केवल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, राइट। आप टोटल कंटेंट में इंपॉर्टेंट मत लीजिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात कही वो कही कि जो हमारी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, इनकी जो पवित्रता है, इनकी जो सैंक्टिटी है, इनकी रक्षा की जानी चाहिए, और देखा जाना चाहिए कि इनमें किसी तरह का कोई प्रदूषण न आने पाए। मैं अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप राष्ट्रपति जी की भाषा ये मत समझिए। तो आपको ध्यान होगा फ्रेंड्स कि इससे पहले मैंने चर्चा की थी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की ही, कुछ दिनों पहले ही मैंने चर्चा की थी, और खासकर व्यापम के संदर्भ में मैंने इस बात को उठाया था कि किस तरीके से, मान लीजिए कि रिक्रूटमेंट सिस्टम, अगर हम रिक्रूटमेंट सिस्टम को डैमेज कर देंगे, मान लीजिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट तो एक तरह से गोमुख की तरह है, जहां से पानी ओरिजिनेट हो रहा है, अगर वहीं से वो चीज गंदी हो गई तो आगे चलकर क्या होगा, क्योंकि इसका जो असर होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। क्योंकि अगर वहां भ्रष्टाचार हो गया तो जो भ्रष्टाचार के माध्यम से गवर्नमेंट सर्विसेज में आए हैं वो आगे चलकर के क्या करेंगे, उन्होंने इस नौकरी को पाने के लिए पैसा दिया है या जो भी किया या सोर्स लगाया, सोर्स लगा करके आए हैं तो वो इस योग्य नहीं है, जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं रिक्रूटमेंट के अगर वो उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं, उसमें कॉम्पीट करके नहीं आ रहे हैं, तो बट नेचुरल कि उसके योग्य नहीं है। तो अगर योग्य नहीं है और उनको पद दे दिए गए तो वैसे कबाड़ा होगा, और यदि वो पैसा दे करके उन्होंने इसे खरीदा है आने के बाद वो क्या करेंगे, उनके लिए तो फिर ये पद लेन देन के मामले हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया इसको पाने के लिए और योग्यता है नहीं। तो यहां करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो ऐसी स्थिति में आप कल्पना करके देखिए कि फिर जो इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस में ही आएंगे ना, तो फिर इन इंस्टीट्यूशंस को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आप, क्योंकि ये तो इनसाइडर है ना, ये तो इंस्टीट्यूट के अंदर घुसे हुए हैं। बाहर वालों को तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब अंदर ही सब कुछ गड़बड़ हो फिर प्रोटेक्ट करना बहुत बहुत मुश्किल, क्या असंभव हो जाता है मित्रों। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो राष्ट्रपति जी ने देश का ध्यान दिलाया ये बहुत बड़ी बात है, और चूंकि इसका संबंध सीधे सीधे रिक्रूटमेंट से था और अपॉइंटमेंट से था, जैसे इसी में हम ले सकते हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें अपॉइंटमेंट्स को ले लीजिए, जैसे हम फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, उसमें अपॉइंटमेंट को लेकर के बात हो रही है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करते हैं उसमें विवाद हो रहे हैं, तो इस तरह के जो विवाद उठ रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में हम सही मायने में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से उन्हीं पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो राष्ट्रपति जी ने जो इधर राष्ट्र का ध्यान दिलाया है, मैं समझता हूं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और चूंकि आप भी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजर रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं और आपका चयन हो जाए उस प्रोसेस के लिए ही आप कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सिविल सर्विस की तैयारी के लिए। और मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ी सी आप अच्छी तैयारी करें, और तैयारी करने के लिए आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर में चले जाएं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक इंडिपेंडेंट चैप्टर होता है रिक्रूटमेंट का, बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा उसे भी देखें, रिक्रूटमेंट की क्या क्या प्रणालियां हैं, इसकी हिस्ट्री देखें, पहले कैसे रिक्रूटमेंट होते थे, अब कैसे हो रहे हैं, तो थोड़ी सी इस पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। मित्रों जहां तक प्राइम मिनिस्टर के स्पीच का सवाल है, आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपने कुछ गिनाई कि हमने क्या क्या किया है, जिसमें जनधन अकाउंट की बात थी, एलपीजी गैस को के बारे में बात थी कि लोगों ने सब्सिडी अपनी तरफ से छोड़ी, शौचालयों की बात थी कि कितने इस गांव क्षेत्र में बने, कितने स्कूलों में बनेगा, ये आंकड़े हैं। और चूंकि ये आंकड़े अभी के हैं, एग्जाम आपके अगर अभी की मेंस को लेंगे तो आप दिसंबर में होने हैं, और ये लगातार आंकड़े चूंकि डेवलपिंग हैं, लगातार और होते रहेंगे, तो इनमें बदलाव होता रहेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने जो बात कही थी वो कही थी स्टार्टअप स्टैंडअप, स्टार्ट कीजिए और स्टैंड अप खड़े होइए। इसमें उन्होंने जो अपील की कि हमारे देश में लगभग 1.25 लाख बैंक की ब्रांचेज हैं, और उन्होंने बैंक ब्रांचेज से रिक्वेस्ट किया कि हर ब्रांच कम से कम एक व्यक्ति को, खासकर जो कमजोर वर्ग से हैं, जो दलित हैं, आदिवासी क्षेत्र से हैं, आदिवासी हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, उनको ऋण दे करके और एक नए काम की शुरुआत करने की कोशिश करें, उसके लिए आगे आए स्टार्टअप्स। अभी आपने देखा है मित्रों कि कुछ समय पहले अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स ले रहे होंगे तो इकोनॉमिक टाइम्स ने कुछ एक कमेटी बनाई थी और स्टार्टअप्स का चयन किया कि जो बिल्कुल नए नए लड़के आए हैं और 2-4 साल के अंदर ही उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी सफलताएं पाई। और ये सारे के सारे जो स्टार्टअप हैं ये सारे कम्युनिकेशन फील्ड के हैं, जिन्होंने वेबसाइट के जरिए एक क्रांति सी खड़ी की है समाज में और बहुत ज्यादा अर्न भी किया है। तो वो इंटरप्रेन्योरशिप को शो कर रहा है कि जो उद्यमिता होनी चाहिए उसको वो वहां दिखा रहा है। तो डेफिनेटली ये जो अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है स्टार्टअप स्टैंड अप, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई आर्टिकल आता है, जब भी कोई बहस होती है, बात होती है, तो आप उसे जरूर पढ़ें, जरूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका संबंध एक तरीके से मेक इन इंडिया से है। मेक इन इंडिया का मतलब ये नहीं कि बाहर से आइए और भारत में बनाइए, बल्कि भारत में ही जो टैलेंट हैं उनसे भी ये अपील है कि आप यहां से प्रोडक्शन शुरू कीजिए। मित्रों एक बात मैं यहां आप लोगों से और शेयर करना चाहूंगा, और वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि एलपीजी के इतने सब्सिडी लोगों ने छोड़ दी और इससे बचत हो रही है। एक मुझे आज मैं आर्टिकल पढ़ रहा था इकोनॉमिक टाइम्स में मोहन गुरुस्वामी जी का, तो उन्होंने एक डेटा दिया है, मुझे लगा कि ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और उन्होंने ये दिया है कि जो हमारे यहां टोटल जो गैस के कनेक्शन है, एलपीजी के जो कनेक्शन है, वो 16 करोड़ हैं, 16 करोड़ गैस के कनेक्शन हैं, और जिसके अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट सब्सिडी दी, गवर्नमेंट ने दी है 2013-2014 में, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो है 46,000 करोड़ रुपए। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, 46,458 करोड़ है, तो इसे मैं आप चूंकि 500 से उधर कम है तो मैं इसे 46,000 करोड़ रुपए कह रहा हूं। 2013-14 में 46,000 करोड़ रुपए एलपीजी के अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी। और उन्होंने एक बात और भी अच्छी बताई है कि जो फ्यूल पर जो सब्सिडी दी जाती है ना, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ भी हैं, पेट्रोल पर दिया जाता है, डीजल पे दिया जाता है, केरोसिन ऑयल पे दिया जाता है, तो ओवरऑल फ्यूल सब्सिडी जो है, जो 2013-14 में दिया गया था, वो था 1.39 लाख करोड़, 1.39 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी फ्यूल पर दी गई थी। याद रखिए टोटल सब्सिडी नहीं है, ये केवल फ्यूल पर दी जाने वाली सब्सिडी है। और इसमें से 46,000 करोड़ रुपए केवल एलपीजी पर है, यानी कि आप मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो टोटल सब्सिडी दी जाती है उसका लगभग लगभग अगर हम देखें तो 1/3 ऑलमोस्ट केवल एलपीजी पर है। तो ये एक डेटा है, जब हम इस तरह के डेटा के माध्यम से जब अपने आंसर लिखते हैं तो डेफिनेटली वो ज्यादा मायने रखती है। दोस्तों अब मैं आता हूं न्यूज के ऊपर, जो एआईआर न्यूज है। एआईआर न्यूज में कुछ खास बातें बहुत नहीं थी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा डिटेल में आपके सामने चर्चा की है। हालांकि ये न्यूज का हिस्सा नहीं था लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात थी मित्रों, क्योंकि हमारा कंसर्न केवल डेट नहीं है, हमारा कंसर्न सही मायने में सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना है, तो मैंने उसे लिया। जो एआईआर न्यूज में जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, आपको मालूम ही है कि 16 अगस्त को अबुधाबी की यूएई की यात्रा पर गए हैं, वो अबुधाबी पहुंच गए हैं। अब आपको चाहिए कि थोड़ा सा खासकर जो यूनाइटेड अरब अमीरात है इसके बारे में थोड़ा सा देख लें, मैप निकाल लें, मैप को समझ लें कि ये कहां पर सिचुएटेड है। दो तीन बातें जो अखबारों में बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है मित्रों, वो ये है कि जो यूएई है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, मतलब तीसरा सबसे बड़ा हमारा निर्यातक राष्ट्र है, व्यापारिक साझेदार है। लगभग 25 लाख भारतीय वहां रहते हैं, खासकर मजदूर और इस रूप में वहां गए हुए हैं। बिहार के बहुत लोग वहां हमारे यूएई में रह रहे हैं और वो एक बहुत बड़ी रकम वहां से कमा करके भारत में भेजते हैं, बहुत बड़ी रकम। और आपको मालूम है कि जब आप राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा देखेंगे तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा में ये शामिल होता है कि विदेश में भारतीय नागरिक जो विदेशों में रह रहे हैं वो जो इनकम यहां भेजते हैं वो भी हमारी आय में शामिल, राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यूएई का है, वहां से भारत में निवेश भी काफी आ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जो गए हैं डेफिनेटली उनका जो सबसे बड़ा पर्पज है वो एफडीआई के लिए उन्हें बताना है कि वो भारत में आए और निवेश करें। और ये बहुत ही सामान्य समझ की बात आपकी होगी ही दोस्तों कि वहां से हम जो आयात करते हैं डेफिनेटली पेट्रोलियम पदार्थ सबसे ज्यादा हम आयात करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, रसायन हैं, कुछ कीमती पत्थर रत्न भी हैं वो वहां से हम आयात करते हैं। मित्रों जो दूसरी खबर थी वो बस थोड़ी सी चूक हो गई, जो सायना नेहवाल हैं जो विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंची, अब लग रहा था कि भारत इस बार फाइनल जीत करके एक इतिहास रचेगा, लेकिन इतिहास रचा गया है, भले ही वो गोल्ड मेडल के रूप में न हो, सिल्वर मेडल के रूप में ही सही। मित्रों एक चीज आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से, खासकर 2-3 सालों से भारत खेल में काफी आगे दिखाई दे रहा है और इस पूरे के पूरे खेल परिदृश्य में जो जो प्लेयर्स बहुत आगे आ रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि इंडिविजुअल रोल्स बहुत ज्यादा है, इंस्टीट्यूशनल रोल्स कम दिखाई दे रहे हैं। सायना नेहवाल को देख लीजिए, सायना मिर्जा को देख लीजिए, और भी जो दूसरे खिलाड़ी हैं चाहे वो मुक्केबाज हैं या पहलवान हैं या शूटिंग में देख लीजिए, भारत इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रहा है। आप देख टेनिस में देख लीजिए, तो ये सब कुछ आप देखेंगे कि इसके पीछे इंस्टीट्यूशन उतना नहीं है जितना कि इंडिविजुअल्स। तो ये एक दिमाग में रखिए कि क्या भारत में खेल का बढ़ावा या खेल को जो प्रोत्साहन है वो इंडिविजुअल लेवल पर ही मिल सकेगा। एक सोचने की बात है, मैं केवल एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूं, इस एंगल से चीजों को सोचने की कोशिश कीजिएगा। मित्रों एक जो खबर थी वो पाकिस्तान को लेकर के थी, आतंकवादी जो घटना है, जो हमारे गोलीबारी जो सीमा प्रांत क्षेत्रों में हुई, तो भारत के विदेश मंत्रालय ने वहां के हाई कमिश्नर को बुला करके अपनी आपत्ति दर्ज की है। ये सामान्य सी जानकारी के लिए ही है और आप देख रहे हैं कि आतंकवादी घटनाएं तो ऐसी ही होती है मित्रों कि शुरू में आप भले ही उसे प्रश्रय देते रहिए लेकिन बाद में पता लगता है कि वो खुद के ही अगेंस्ट हो जाती है चीजें। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि हम दूसरे के लिए कब्र खोद रहे थे और पता लगा कि उस कब्र खोदते खोदते उस कब्र में हम खुद ही बन गिर गए। ऐसा होता है। पाकिस्तान के का जो पंजाब प्रांत है आपने देखा कि वहां अटैक हुआ है और वहां के जो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर, उसमें वो मारे गए हैं। तो जनरली ये जो आतंकवादी जो ग्रुप होते हैं वो किसी के नहीं होते, लेकिन बशर्ते कि राष्ट्रों को ये बात समझ में आए। और खासकर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जरा सी भी शांति वार्ताओं का दौर आता है तो आप देखेंगे कि इस तरह की घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। मित्रों एक आखिरी में जो छोटी सी खबर थी वो ये थी कि अब जो आईएएस के जो प्रोबेशनर्स होंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो प्रोबेशनर्स होंगे, वो अब उन्हें तीन महीने, शुरुआत के तीन महीने दिल्ली में बिताने होंगे। पहले यह होता था कि उन्हें सीधे सीधे जो कैडर अलॉट होता था उनके कैडर में भेज दिया जाता था, लेकिन अब उनके ट्रेनिंग में यह परिवर्तन किया गया है कि फर्स्ट थ्री मंथ्स वो दिल्ली में रहेंगे ताकि भारत सरकार के कामों को देखें, समझ सकें कि कैसे भारत सरकार काम करती, क्योंकि आपको मालूम है कि बाद में इसी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं डेपुटेशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आते हैं और काम करते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत अच्छा कदम है। इस बीच में वो अपने जो सीनियर हैं थोड़े से उनसे भी कॉन्टेक्ट में आएंगे, उनसे इंटरेक्शन होगा, और इससे जब वो स्टेट में जाकर के और फिर अपने स्टेट के बारे में जब सेंटर से कुछ बातचीत करेंगे तो ये जो कॉन्टेक्ट हैं, ये जो रिलेशनशिप है, वो डेफिनेटली बहुत महत्व की होगी। तो ये खबरें थी मित्रों जिसकी मैंने चर्चा की, और कोई खास बड़ी खबरें नहीं है। न्यूज़पेपर का जहां तक सवाल है फ्रेंड्स, तो न्यूज़पेपर्स में भी आज ज्यादा क्लिपिंग्स आपके लिए नहीं है। एक क्लिपिंग्स की मैं खासकर चर्चा करना चाहूंगा, जो इकोनॉमिक टाइम्स में जो एडिटोरियल कमेंट आया है खासकर आधार कार्ड को लेकर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है क्योंकि जनसामान्य इससे जुड़ा हुआ है, भारत की सुरक्षा भी इससे जुड़ी हुई है, सब्सिडी जैसे दूसरे फायदे भी इससे जुड़े हुए हैं। तो अभी तक आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ ही दिनों पहले सरकार से कहा था कि नहीं, आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसने अपने पहले के अपने डिसीजंस को बदलते हुए ये जरूर कह दिया था कि जो एलपीजी गैस की जो सब्सिडी दी जा रही है उसके तहत इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कुकिंग गैस और फूड जो आप कह लीजिए कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जो अनाज मिलता है उसके लिए आधार कार्ड को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस एडिटोरियल में इकोनॉमिक टाइम्स ने इसकी प्रशंसा की है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को पूरी तरह से यूजलेस नहीं बताया, उसको कुछ न कुछ उसकी मान्यता बनाए रखी है। तो मित्रों ये एडिटोरियल कमेंट है, ये आप देख लेंगे। तो दोस्तों अंत में मैं आता हूं अब मेल पर। एक स्टूडेंट हैं विजय कुमार तिवारी जो कानपुर से आ रहे हैं, यहां अभी अक्टूबर की जो क्लासेस होने वाले जा रही है एकेडमी की, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया है। कोई भी स्टूडेंट जो कानपुर यहां या वहां के आसपास से आ रहा हो वो विजय कुमार तिवारी से कांटेक्ट कर सकता है। इनका नंबर है विजय कुमार तिवारी का 9956226146। और मित्रों अब मैं सबको, आप सबके प्रति जिन्होंने मेल लिखे हैं, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और उनमें से कुछ के नाम मैं यहां ले रहा हूं। वो हैं सुशीला गावड़े, भरत कुमार भिवानी, प्रद्युम्न मिश्र जो मऊनाथ भंजन से हैं, नायक प्रवीण, गौरव धीमान चंडीगढ़ से, सुमित तिवारी रीवा से, अरुण कुमार और मयंक वर्मा लखनऊ से। आप सभी का आभार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही आज के इस ऑडियो गाइडेंस को यहीं विराम देते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।